अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान जो है इंसान को मरते दम तक नहीं छोड़ता। सारी ज़िंदगी लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दो इसकी ख्वाहिश दिलाता है, खूब मुश्किलें दिलाता है, हत्ता के हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब इरजिऊनी, यहाँ तक कि जब आए उनमें से किसी को मौत तो वो हसरत से कहेगा, ए मेरे मालिक मुझे इस दुनिया में वापस लौटा। क्यों? लअल्ली आमलु सालिहन फी मा तरक्तु कल्ला, शायद कि मैं वो काम करूं इस दुनिया में दोबारा जाकर जिसे मैं छोड़ आया हूं, यानी अल्लाह मुझे दोबारा भेज ताकि मैं वो काम करूं। अब यहाँ जो लफ्ज़ है ना फी मा तरक्तु, इसके दो मानी है, वो काम करूं जो छोड़े हुए थे, यानी सारी ज़िंदगी पोस्टपोन करता गया जो काम नेकी के वो कर लूँ। एक दूसरा मफहूम क्या, फी मा तरक्तु, कि वो दुनिया जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ उसमें वापस भेज। जवाब क्या है? कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये एक लग बात है वो जो ये कह रहा है, यानी ये जो बात कह रहा है ये सिर्फ बात ही है, भेज दिया तो करने फिर कोई नहीं इसने अच्छे काम। और अब बात ये है कि पीछे का तो रास्ता ही नहीं है, ये तो वन वे रोड है। हाँ, इसके आगे पूछो क्या है, वमिन वरा इहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और इनके आगे तो एक आड़ है उस दिन तक जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अब तो आगे जाना है, पीछे किसने जाना है? जैसे ट्रेन आगे ही आगे जाती है ना, मुड़ती नहीं है, इसी तरह अब जिंदगी से आगे ही जाना है। और बरज़ख़ के पर्दे के पार क्या है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस सूरी फ़ला अन्साबा बैनहुम यौम इज़िम वला यतसाअलून, और जब सूर फूका जाएगा तो ना रिश्तेदारियां काम आएंगी उनके दरमियान उस दिन, और ना वो एक दूसरे के मुतल्लिक पूछ सकेंगे, यानी कौन किस हाल में है। फिर क्या होगा, फमन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइक हुमुल मुफ्लिहून, अलबत्ता जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही लोग तो कामयाब और कामरान होंगे। और वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइक अल्लज़ीन खसिरू अन्फुसहुम फी जहन्नम खालिदून, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने आप को। गौर कीजिएगा, किसको नुकसान पहुंचाता है इंसान? अपने आप को। वो जहन्नुम में हमेशा जलते रहेंगे, और वहाँ के हालात क्या होंगे, तलफ़ु फी वुजूहहुमुन्नार वहुम फीहा कालिहून, बुरी तरह झुलस देगी उनके चेहरों को आग, और इसमें दांत निकाले होंगे तेवरियां चढ़ाते हुए। पूछा जाएगा, अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, क्या हमारी आयतें नहीं पढ़ी जाती थी तुम्हारे सामने और तुम इन्हें छुटलाया ही करते थे? कि सुनाओ वो वक्त, आज तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, तेवरियां चढ़ा रहे हो, मुंह बसोर रहे हो, कल जब दावत दी जाती थी आयतों की तो तुम उस वक्त झुटला नहीं देते थे, इग्नोर नहीं करते थे। अब इसका क्या जवाब देंगे, कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना वकुन्ना कौमद्दालीन, माजरत करते हुए कहेंगे, हमारे रब गालिब आ गई थी हम पर हमारी बदबख्ती और हम तो गुमराह लोग थे, लिहाजा रब्बना खरिचना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ए हमारे मालिक एक बार हमें निकाल इससे, फिर अगर हम नाफरमानी की तरफ रुजू करें तो यकीनन हम जालिम होंगे। अच्छी बात ही कह रहे हैं ना, बुरी तो नहीं कह रहा, लेकिन जवाब सुनिएगा, कालख़सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, जवाब मिलेगा फिटकारे हुए पढ़े रहो इसी में और मुझसे कलाम ना करो। इख्सा कहते हैं कुत्ते और सुअर को धुतकारने को, चलते चलते कुत्ता आए तो उसको बंदा पत्थर उठा के फेंकता है, इस कैफियत को अरबी में इख्सा कहते हैं। और मुझसे कलाम न करो, मेरी तरफ ना आओ। अब वो सोचेंगे कि गुस्सा किस बात पे, हमने क्या किया। तब आगे से अल्लाह ताला इनकी फर्द जुर्म आयद करते हुए कहते हैं, तुम्हारे कसूर क्या थे? इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी। तुम्हें याद है, एक गिरोह मेरे बंदों में से ऐसा था। यकूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंत खैरुर राहिमीन। जो अर्ज किया करता था कि हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, बस तू हमको बख्श दे, हम पे रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर है रहम फरमाने वाला। याद है गिरोह था ऐसा, जिनकी हर वक्त तड़प ही क्या थी, ईमान, गुनाहों से माफ़ी, अल्लाह की रहमत। तुम क्या करते थे उनके साथ? फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख्रिया, तुमने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री वकुंतुम मिन्हुम तदहकून, हत्ता कि इस मशगले ने गाफिल कर दिया तुमको मेरी याद से, और तुम इन पर कह कहे लगाया करते थे। ये तो तुम्हारा बुरा अंजाम हुआ ना, वो जिनका मजाक उड़ाया गया, जिन्होंने शैतानी वसवसों पे भी सब्र कर लिया और तुम्हें जवाब न दिया, उनके साथ क्या मामला है? इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू वअन्नहुम हुमुल फाइज़ून। मैंने बदला दे दिया है उन्हें आज उनके सब्र का, ज़रा देखो तो सही, वही हैं मुराद को पाने वाले। यहाँ तक तो रुकने को दिल ही नहीं चाहा, हालांकि अगली आयतों में और जहन खुलने वाला है। लेकिन हमने देखा कि जो शैतान सारी ज़िंदगी इंसान के पीछे लगा रहा, मौत तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, सारी ज़िंदगी गलत कामों को करता रहा, अब मौत का वक्त आ गया। हत्ता इज़ा जा हदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आती है इनमें से किसी की मौत। किन की है? अहद हुम, हुम कौन है? यही शैतानी वसवसों पे चलने वाले, दावत का इनकार करने वाले, छुटलाए जाने वाले। हर बंदा जिस दर्जे का कुफर करेगा, ये उस दर्जे का उसके साथ मामला होके रहेगा। अब देखिए कि हम में से हर बंदा दुनिया से जा रहा है, हर दिन जो हमारी ज़िंदगी में आता है ना, हमें हमारी मौत के करीब करता है। आजकल तो हम कहते हैं ना, साल महीने बनते जा रहे हैं, महीने हफ्ते, हफ्ते दिन बन रहे हैं, और वाकई जैसे कहते हैं कि वीकेंड जल्दी से गुजर जाता है, ऐसे जल्दी से आ भी जाता है। क्या हर सुबह सूरज निकलते हुए हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं एक और दिन अपनी कब्र के करीब आ गई? लफ्ज़ मौत से भी नहीं कोई इतना डर लगता अब हमें, क्योंकि देखते हैं ना लोगों को मरता हुआ, कब्र का लफ्ज़ बोले। यहाँ अल्लाह ताला मौत और कब्र के मराहिल पेश करते हैं। कैसा शख्स जो सारी ज़िंदगी दावतों को झुठलाता रहा, हक की बात को, और दीनदारों का मजाक ही उड़ाता रहा, यहाँ तक कि उसकी मौत का वक्त आ गया। काल रब इरजिऊनी, कहते रब मेरे मुझे वापस लौटा। हर मुसलमान यही कहता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को बस एक टोकन के तौर पे लिया हुआ था, और काफिर को तो कहना भी है, जिसने जिस दर्जे की ज़िंदगी की न कदरी की होगी ना, वो अपनी मौत के वक्त क्या कहेगा? रब इरजिऊनी। यहाँ लफ्ज़ देखिएगा, ग्रामर की रोशनी में इरजिऊनी होना चाहिए था, मुझे छोड़ दे, लेकिन इरजिऊनी जमा का सीगा है। इसको दो तरह से समझा गया, एक तो यह है कि मौत का एक नहीं बहुत सारे फरिश्ते होंगे, उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह या मौत के फरिश्तों मुझे छोड़ दो, और दूसरा मफहूम है कि बार बार कहेगा छोड़ दो ना, जाने दो ना, माफ़ कर दो ना, प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा, मुझे एक दफ़ा इस दुनिया से जाने तो दो, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। रा जीम ऐन, रजा आ का लफ्ज़ है इसमें, इरजिऊनी मबदा की तरफ लौटना, यानी जो बंदे का असल होता है ना बदा, शुरू जहाँ से ज़िंदगी हुई उसकी तरफ लौटने को रजा कहते हैं। इसीलिए तलाक की सूरत में रुजू का लफ्ज़ आता है, क्योंकि उसमें इंसान निकाह की तरफ पलटता है, असल निकाह था उससे तलाक निकली, तो रुजू करा, पलट आया। अब आप देखिए कौन ये बात कहेगा, एतकादी काफिर भी कहेगा और अमली काफिर भी कहेगा। और हर बंदा अपने हिसाब से कहेगा, क्योंकि काफिर मरना नहीं चाहता, आपको पता है ये बात। इसीलिए तो ये खौफ ज़्यादा हो जाते हैं बुढ़ापे में जाके। ये आज के दौर में जो ओल्ड एज में टेंशन का मर्ज़ है ना, असल में ये मौत से बचना चाहते हैं। और हकीकत यह है कि कुफार की आंखें उस वक्त खुलती हैं जब मौत का फरिश्ता पैगाम अजल लेकर आ जाता है। बंदे मोमिन की आंखें दुनिया में खुली होती हैं। ये जो हम जुमला बोलते हैं ना, हाय आज फलां की आंखें बंद हो गई, ये गलत बोलते हैं। उसकी तो खुलती हैं, तभी तो उसको वो फरिश्ते दिखते हैं जो हमें आज नहीं दिख रहे। हाँ, काफिर की आंखें वाकई उस दिन खुलती हैं। पुलिस को देख कर चोर की आंखें खुले, पहले ऐसे ही सोचता रहे, नहीं किसने कहना है कुछ, कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल वही कैफियत। और उस वक्त फिर अफसोस करते हुए कहेगा, रब इरजिउनी, लफ्ज़ रब भी पे गौर कर लें, क्या कह रहे, मेरे रब कौन है ये, एथियस्ट है। अगर एथियस्ट भी मर रहा है तो उस वक्त उसको पता चल जाएगा कि गॉड था जिसको मैंने गौश बना दिया। ये है फितरत की पहचान। फितरत की पुकार है कि रब को रब जानते हैं, और दूसरा इस लफ्ज़ रब से पता चल रहा है कि ये दुनिया में जो रब को रब कहते थे यानी मुसलमान, उसके साथ भी ये मामला हो सकता है। और सूरह मुनाफिकून की बिल्कुल आखिरी आयतों में भी यही बात आती है कि मरने वाला कहता है, लौला खरतनी इला अजलिन करीब, क्यों नहीं मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी थोड़े से वक्त के लिए। उबादा बिन सामत की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब लिका अल्लाही अहब्बल्लाहु लिकाअहु व मन करीह लिका अल्लाही करीहल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करते हैं, और जो अल्लाह ताला की मुलाकात को ना पसंद करेगा तो अल्लाह ताला भी उसको पसंद नहीं करते। ये बात सुन के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हम तो मौत को पसंद नहीं करते, यानी मुराद क्या है कि फिर अल्लाह से मुलाकात को पसंद करना। तो आपने फरमाया कि मकसद ये नहीं, बल्कि जब मोमिन को मौत आती है, ज़रा इमेजिन करें, बल्कि अपने ऊपर लेके सोचें, जब मोमिन को मौत आती है तो इसे बिशारत दी जाती है कि अल्लाह तुझ पर राजी है और तेरी इज्जत अफजाई होगी, उसको वहीं बता दिया जाता है। आप कहीं जा रहे हो तो कोई कहे ना आपको, हाँ वो बड़े बेचैन है आपको मिलने के लिए, बड़े मुंतजर हैं, तो यकीन करें कि रास्ते की सऊबतें भूल जाती हैं। अच्छा, मुझे मिलना चाहते हैं, मुझे मिल के खुश होंगे, मेरी इज्जत करेंगे, मेरे लिए इख्तमाम कर रहे हैं, तो जैसे आप खुश होते हैं, का वो मोमिन आगे जाने को पसंद करता है, और फिर अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। इमेजिन करें, कोई बहुत ही मनपसंद मेहमान आपके घर आए, जो दिल की कैफियत है, अल्लाह उससे कई गुना उस वक्त खुश होता है जब एक सच्चा मोमिन दुनिया से जाता है। इसीलिए तो बाज़ जगह आते हैं ना कि खुशबू फैल जाती है सच्चे मोमिन के जाते ही, जहाँ से उसकी रूह गुजरती है वहाँ खुशबुएँ फैलती हैं, शायद अल्लाह रास्तों में फैलाता है। सच्चा मोमिन दुनिया में नहीं रहना चाहता, वो आगे जाना चाहता है। एक और आपको रिवायत सुनाती हूँ, इंशाल्लाह तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह लेंगे। लेकिन इसके बरक्स काफिर को उस वक्त अजाब की नवीद सुनाई जाती है, वो आगे जाना हरगिज़ पसंद नहीं करता और अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता। इसी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत का खुलासा है। अनवांटेड गेस्ट की तरह काफिर की रूह को लेके जाया जाता है तो अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी तरह रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मोमिन फरिश्तों को देखता है तो मलाइका उसे कहते हैं, क्या हम तुम्हें दुनिया की तरफ लौटा दें। आप ज़रा इमेजिन करें, मेरा ख्याल है कि कोई 10 साल की बीमारी के बाद भी मर रहा हो ना, तो उस वक़्त चारपाई के इर्द गिर्द जमा लोगों से पूछा जाए कि क्या ख्याल है कि ये मरे कि ना मरे, तो कहेंगे ना मरे, यही चाहते हैं ना लोग। इसी तरह कहते हैं कि मोमिन से भी पूछा जा रहा होता उस वक़्त, क्या ख्याल है हम तुम्हें दुनिया की तरफ लौटा दें, तो मोमिन कहता है कि इस दुनिया की तरफ जो आलामो मसाइब का घर है, मैं नहीं उधर जाना चाहता, बल्कि मुझे तो अल्लाह की तरफ ले चलो। लेकिन काफिर ऐसे वक्त में चिल्लाता है और कहता है कि रब मुझे दुनिया में लौटा दे। ये तफसीर मसरी की रिवायत है। रब इरजिउनी, क्योंकि तैयारी नहीं की हुई, जाके करेंगे क्या, कुछ लेके ही नहीं आए। आप देखिए, आप कहीं जाएं तो आप भी जितनी तैयारी से जाते हैं ना, आपको भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। और आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो और तोहफा ही ना कोई लेके जा रहे हो, मेरा तो दिल ही नहीं करता गाड़ी से निकलने को, कि हाय खाली आ जाऊंगी, कुछ भी ना लेके जाऊं, चाहे छोटी सी चीज, कुछ नहीं, कभी मौका मिले ना एक दफा जाके फिर कुछ ले आऊं। तो सोचे जिन्होंने नेकियों से खाली जिंदगी बसर की होगी, खाली हाथ जाने को दिल चाहेगा? वो तो शर्मसार होंगे, कपड़ों में से बू आ रही है, गंदा हाल है, कोई मेकअप नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की, कोई बाल संवारे ही नहीं, सारी जिंदगी इस चीज का तो यकीन ही नहीं रखा कि मुझे जाना है। आप खुद इसको अपनी जिंदगी में लेके देखें, जहां आपको बाय फोर्स ले जाए कोई, आप आखिरी वक्त तक कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। ऐसे नहीं, मैंने नहीं, किसी को नहीं पता, और आप बार बार कहेंगे कपड़े भी नहीं इस्त्री किए हुए, पुराना सूट पहना हुआ, नाइट सूट पहना हुआ, दूसरे को नहीं पता चलता। जो बुला रहा होता है वो आपका मुंतजर होता है ना, तो जाने वाला भी इंतजार करता है। इसीलिए जब हम कहीं जाते हुए अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ये असल में इज्जत देना होता है उसको, कि हम तुम्हारे घर इज्जत से आए हैं। और किसी के साथ भी जब घर में बुलाएं और घर ही गंदा मंदा फैला हो तो कहेंगे इसको जरा खुशी नहीं मेरे आने की, आज ही जरा डस्टिंग कर लेता। फर्क है ना? अब इस सारी चीज को आगे लेके चले, जो सारी जिंदगी तैयारियां ही करता रहा, अपने आप को सजाता और संवारता ही रहा, नेकियों से, कहीं अच्छे अखलाक के साथ, कहीं इबादत के जरिए, तो वो तो कहेगा जल्दी जाऊं। आपने फील किया कि जब कोई तैयार हो जाता है ना, फिर सब्र नहीं होता? ये मेरा भी हाल है, क्योंकि फिर उलझन आती है कि भाई तैयार हो गए, अब चलें जल्दी से। मोमिन सारी जिंदगी तैयारी करता है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो के कोट पहन के, अबाया पहन के बैठा हुआ है, या उसको अगर जिस हाल में भी जाना है, तो वो फिर कहता है मुझे ले चलो, बस अब मुझे जाना है, मुझे इस दुनिया में नहीं जाना वापस। लेकिन काफिर क्या कहता है, रब इरजिउनी, ए मेरे रब लौटा मुझको। क्यों भाई, क्या रह गया, अब क्या करना है? लाली आमलु सालेहन फी मा तरक्तु, कोई आपके लिए गिफ्ट ले आऊं, थोड़ी तैयारी कर रहा हूं, नहा ही आऊं, इतनी बू आ रही है, आपको कैसा लगेगा मुझसे मिलके? ये हसरत है बंदे की, वापस जाना चाहता है। यहां से पता चलता है ना, फी मा तरक्तु, क्या छोड़ा हुआ है आज, आगे जाने की तैयारी तो छोड़ी हुई है। देखिए कि कहीं जाते हैं ना, तो अक्लमंदी क्या होती है कि पहले वहां जाने की आप तैयारी कर लें। आप कहें कि नहीं, पहले ये पीछे वालों के काम कर दूं, घर साफ कर दूं, ये कर दूं, वो करूं, आपके जाने का वक्त आ जाएगा, तो आप रोएं धोएं, आपको खाली सूटकेस भी लेके जाना पड़ा, जाएंगे क्योंकि अब आपका वक्त आ गया है। जो इस दुनिया को सिर्फ सजा रहे हैं, यहीं का घर, यहीं की गाड़ी, यहीं के कपड़े, तो मौत के वक्त वो कहेंगे फरिश्तों ठहरो ठहरो, मैंने तो पैकिंग भी नहीं की, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, मैं तो इसी घर को संभालता रहा। फिर उस वक्त घर वालों पे भी गुस्सा आएगा, इन्होंने नहीं मुझे वक्त दिया, देखो इनका खाना पकाती रही कि इनको पीछे से फिक्र ना पड़े, मसला ना पड़े, इनके लिए घर साफ करती रही, इनके कपड़े धोती रही, पकड़ो इनको, मुझे छोड़ दो। कहा पीछे नहीं, अब तो आगे ही आ गए हैं। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये पढ़ते हुए तो यकीन करें शर्म आती है, जैसे किसी को कहे और चुप करके बैठ, तू तो सिर्फ बातें ही करता है। अल्लाह कह रहे हैं ये सिर्फ एक बात है जो कह रहा है, करना कराना इसने कुछ नहीं। और आप सोचें कि आप कहते हैं कि हाय ये कितनी बुरी बात है, कोई ऐसा कहेगा करेगा, लेकिन आप अगर गौर करें ना, तो कई बार जिंदगी में ये मामला हम करते हैं। क्या जब बीमारी से उठते हैं तो क्या वो अल्लाह ने इरजिउनी वाली दुआ नहीं पूरी की होती, हादसे से बाल बाल बचे? मैं तो कहती हूँ हर जहाज की फ्लाइट से जब हम पाँव जमीन पे रखते हैं ना, तो ये रब्बिर जेऊनी की एक कैफियत है, उठो लाली आमल सालेहन, करो आमल जो करे, क्योंकि तुम्हें हवाओं में से अल्लाह ने नीचे बुलाया, ना तुम्हारे पाँव जमीन पे थे, ना तुम आसमानों पे थे, तो अल्लाह ने तुम्हें फिर एक जिंदगी दी। हर दिन जो आप मैं 20-25 मील गाड़ियों में सफर करके आते हैं, क्या ये जेऊनी वाली कैफियत नहीं? कितनी गाड़ियां होती, किसी एक गाड़ी का अगर थोड़ा सा कंट्रोल खत्म हो जाए, मर सकते हैं, लेकिन यूज टू होते हैं तो डरते भी नहीं हैं। जरा सोच के देख लें, हर बंदा अपने ऊपर सोचे, कैसी शर्मिंदगी होगी, क्या काम किए और कैसे काम किए। हम दूसरों पर बात लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये उनकी बात है, लेकिन अपने पे लेंगे तो फिर पता चलेगा। आज सारी जिंदगी हमारे गम के है, आज यहाँ बैठने से पहले भी हमें क्या गम थे, सोचें हर एक, क्या करना है, क्या पकेगा आज, आज ये मसला, आज वो मसला, ये है वो है। अब इसके आगे लाइए कि अगर आज से अगला कदम हमारा मिम वरा इहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून आगे की तरफ चल पड़ा, तो क्या करेंगे? कितनी नमाज़ें हमने खाली दिल के साथ पढ़ी और कितनी तवज्जो के साथ पढ़ी। हमारे लिए ये जो आज का लफ्ज़ है ना, ये गनीमत है। क्योंकि वो पलटा कहाँ रहा है, इस दुनिया में, और दुनिया क्या है, आज। और ये जो लफ्ज़ है ना वरा, ये आगे के लिए भी आता है, पीछे के लिए भी आता है। आड़ होता है इसका लफ्जी माना, पर्दा जिसको आप कह लें उर्दू में। और बरज़ख़ क्या है? मौत से लेकर दोबारा उठाए जाने का वक्त, जहाँ भी गुजरे। इसीलिए फिर इसको आलमे कब्र भी कह दिया जाता है। कब्र के अंदर जो वक्त गुजारा जाएगा वो बरज़ख़ का वक्त है। बरज़ख़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ना हम इस दुनिया वालों को दिख रहे होते हैं। आप सोचें ना कि जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं ना, तो कोई ऑफिस में चला जाए तो हमें भी नहीं वो दिख रहा, और उधर वालों को भी नहीं दिख रहा, एक कोने में है ना। तो बरज़ख़ ऐसी बीच की जगह है, इधर भी एक पर्दा है इनको नहीं दिख रहा, और एक उधर पर्दा है उनको नहीं दिख रहा। उसकी एक अपनी ही दुनिया होती है, इसलिए अल्लाह ताला वहाँ उसको ले जाते हैं। और ये भी अच्छा ही है कि अल्लाह ताला पर्दे में डाल देता है, यकीन करें। रिवायात में आता है कि मरने वाले के साथ जो मामलात होते हैं कब्र में, अगर लोग दुनिया में ये देख लेना तो अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें। फिर उसके बाद क्या फरमाया? कहाँ जाएगा? इला योम युबासून। इससे पता चलता है कि अब आगे ही जाना है। आपको तक एयरपोर्ट पे आप जब जाते हैं ना, बहुत सारी मिसालें, पता नहीं ना चाहते हुए भी मुझे मौत के सफ़र के साथ एयरपोर्ट की याद आती है। आप देखिए, आप गए, कुछ लोग आपको छोड़ने गए, प्यारे आपके जितने भी साथ जा सके। फिर एक जगह आती है, वो कहते हैं बस पासपोर्ट दिखा के आप जा सकते हैं। फिर आप वहाँ मिल लेते हैं किसी को, और साथ हो सकता है कोई अपना पासपोर्ट दिखा के अंदर तक चला जाए। फिर जब आप लगेज लेते हैं, देते हैं, चुकाते हैं, अक्सर आपको खुद ही करना पड़ता है, पोर्टर है। लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ ऐसी कैफियत होती हैं कि आप बाहर आ सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, पासपोर्ट दिखा दें, टिकट दिखाएं, को वज़न ज़्यादा है कम है, जा सकते हैं आ सकते हैं। फिर एक ऐसा वज़न होता है कि आप सिर्फ वहाँ जाके बस उनको देख के कह सकते हैं, वर्कर्स के ज़रिए, कि इनको ये दे दें, आपको वो बाहर नहीं आने देते। लेकिन फिर एक ऐसी सिक्योरिटी चेकिंग आती है कि वहाँ लिखा होता है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते पैसेंजर। ये है बरज़ख़। मौत से जो पलटते हैं ना बीमारियों की सूरत में, ये आना जाना, ये वो वक्त है जहाँ आप आके जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक दफ़ा हिचकी लग गई तो अब आ गई आ गया है। फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, जब फूंक दिया जाएगा सूर में। नुफ़िख़ा मजहूल है, नफ़ख़ा से, कौन फूकेगा यह नहीं पता, लेकिन रिवायात से पता चलता है इसराफील। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुंह को भोंपू लगाए बैठे हैं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की देर है, उसी वक्त वो उसको फूंक देंगे। पीछे भी इस पे हम बात कर चुके हैं, जब सूर में फूंका जाएगा। फला अंसाब बैनहुम यौम इज़्ज़ वला यतसाअलून। ये बड़ी दुखी बात है, दुखी कर देने वाली बात है कि रिश्तेदारियां सारी खत्म। अंसाब नसब की जमा, अब सारे रिश्ते खत्म। रिश्ता ख़त्म होता है तभी तो उसकी बीवी जो है वो दोबारा शादी कर लेती है ना कहीं। अच्छा, हमारे यहाँ पता नहीं, मुझे आयत पढ़ते हुए कुछ लोगों से सुनी हुई एक बात याद आ गई कि कुछ कल्चर ऐसे हैं पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ही, कि जो मरने के बाद बेवा को शौहर का मुंह नहीं दिखाते। क्यों? कहते हैं निकाह टूट जाता है। तो जो बाकी औरतें देख रही हैं वो उसके निकाह में थी। मुझसे पूछा किसी ने कि क्या मरते निकाह टूट जाता है? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, क्या बात है? कहने लगी नहीं, हमारे ख़ानदान में जब कोई मरता है ना तो फौरन उसकी बीवी जो होती है ना उसको लेके अंदर ले जाती है, और वो रोए चीखे चिल्लाए उसको मुंह नहीं देखने देते। कहते नहीं, अब तुम्हारा इससे निकाह टूट गया है ना। जहालत। आप सोचिए कि दुनिया में तो जो मामले थे, तो फिर वो इद्दत किसकी करेगी? इंतज़ार क्यों करेगी इतने महीने? हाँ, वहाँ जाके क्या होने वाला है? फलान साहब बैनहुम, कोई नसब नहीं, सब रिश्ते ख़त्म। माँ बेटों से और बेटे माँ से भाग जाएंगे। सूरह तबस में भी आता है, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। क़्यामत के दिन इंसान अपने भाई, अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपने बच्चों से भागेगा। उससे नस्बत कौन सी काम आएगी? याद है आपको? वला युसलु हमीमुन हमीमा, कोई गहरा दोस्त भी उस दिन किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। लेकिन इल्लल मुत्तकून, तकवा की बुनियाद पे जो रिश्ते कायम होंगे ना वो काम आएंगे। हज़रत आयशा ने बड़ी मोहब्बत से एक मौके पे अल्लाह के नबी से पूछा था कि अल्लाह के नबी आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो क्या क़यामत के दिन आप मेरी कुछ मदद करेंगे? तो आपने फरमाया कि क़यामत के मराहिल में तीन मोड़ ऐसे आने वाले हैं कि ला यस्कुरु अहदुन अहदा, जहाँ कोई एक किसी दूसरे का को याद भी नहीं रखेगा, मैं भी भूल जाऊँगा। वो कौन से? इंदल मीज़ान, जब नामा अमल तुल रहे होंगे। हर एक को गम लगा होगा कि मेरे पलड़े भारी हैं कि हल्के हैं। फिर जब नामे अमल बट रहे होंगे, उड़ा के दिए जाएंगे, गम होगा कि दाएं में मिलते हैं कि बाएं में, यानी जैसे आपके लिए रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं। और तीसरा इंदस से रात पुल सरात से, कि पता नहीं खैर से गुजरते भी हैं कि नहीं गुजरते। ऐसे वक्तों में सारे के सारे भूल जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक रिवायत सुनाती हूँ, इब्ने मसूद का बेसिकली ये कॉल है और इब्ने अब्बास से भी है। कहते हैं कि क़यामत के दिन एक एक बंदे मर्द और औरत को महशर के मैदान में लाया जाएगा और तमाम अव्वलीन और आखरीन के इस भरे मजमे के सामने खड़ा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला का एक मुनादी यानी कोई पुकारने वाला ये निदा करेगा, ये शख्स फलां बिन फलां है, अगर किसी का कोई हक इसके ज़िम्मे है तो सामने आ जाए और इससे अपना हक वसूल कर ले। सोचिए ज़रा, आप एक लम्हे के लिए सोचें, हाथ ठंडे होते हैं। हम कह सकते हैं भाई मैंने जो लेना देना है मेरे से हिसाब साफ कर लो। मैं देखती हूँ 10-10 साल लोगों की शराकतें जो वो चलती रहती हैं, नई फैसले करते कि जिस दिन बैठे उस दिन बहुत कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दुनिया में चले भी गए हिसाब किए बगैर, तो वहाँ जाके खड़ा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये जो बात आएगी, ये वो वक्त होगा कि बेटा इस पर खुश होगा कि मेरा हक बाप के ज़िम्मे निकल आया। ज़रा सोचिए, यानी उस वक़्त जैसे बेटे की बाछें खिल जाएगी कि आज लेता हूँ अपने बाप से हक, सारी मोहब्बतें ख़त्म। और अगर बाप का कोई हक बेटे पर हुआ तो बाप खुश हो जाएगा कि आज वसूल करूँगा इससे। इसी तरह मियाँ और बीवी और भाई बहन, जिसका जिस पर कोई हक होगा, ये मुनादी सुनकर उससे वसूल करने पर आमादा और खुश होगा। कहते हैं यही वो वक्त होगा जिसके लिए कुरान में आया फलांसा बबैनहुम, सारे रिश्ते कट जाएंगे। आज दुनिया में हम कितना रिश्तेदारों के लिए करते हैं ना, आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हम जिनके लिए रब को नाराज़ करते हैं शायद वो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं। लेकिन आप देख लीजिए क़यामत के दिन खुशी होगी कि आज लेता हूँ मैं इनसे हिस्सा। लिकुल्लि इमरिय मिनहुम यौम इज़िन शानई युग्नी, उस दिन हर बंदे का हाल ये होगा जो उसको दूसरों से बेनियाज कर देगा, मेरे पूरे हो जाएं, दूसरे के जाते हैं तो जाएं। फिर आप सोच लीजिए कि दुनिया में अगर हमने अपनों को खुश करने के लिए रब को नाराज़ किया या अपनी नेकी को कम किया तो क्या हाल होगा। ये जो बरज़ख़ का लफ्ज़ है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये नोट कर लीजिएगा। वहाँ आड़ को कहते हैं बरज़ख़। सूरत मारिज में भी आता है वला युसअलु हमीमुन हमीमा। और ये जो लफ्ज़ है ना मवाजीन, ये मौजून की जमा, वो चीज़ जिसमें वज़न किया जाए। अब देखिए कि दुनिया में जब हम कहीं भी थोड़े बहुत पैसे रखते हैं ना अपने, या किसी को दे देते हैं, तो हम बार बार उसका हिसाब रखते हैं। मैंने सुना है कि बिजनेसमैन और स्पेशली जो शेयर्स के बिज़नेस लोग करते हैं तो वो अक्सर टीवी खोल के बैठे रहते हैं, क्या रेट हुआ, डॉलर ऊपर गया नीचे गया, और उसके साथ उनका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे जाता है, बाद दफ़ा बिस्तर पर आ जाते हैं। कभी हमने आखरत की स्टेटमेंट्स देखी, वहाँ क्या गया सुबह से लेके अभी तक, और इस पूरी ज़िंदगी में क्या होगा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं क़यामत के रोज़ इन लोगों के आमाल का हिसाब इस तरह होगा कि जिस शख्स की नेकियाँ इसके गुनाहों से बढ़ जाएंगी, ख्वाह एक ही नेकी की मकदार से बढ़े, वो जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स के सैयात और गुनाह नेकियों से बढ़ जाएंगे, ख्वाह एक ही गुनाह की मकदार से बढ़े, वो दोजख में जाएगा। मगर इस मोमिन गुनाहगार का दाखला दोजख में तत्खीर और पाक करने के लिए होगा, जैसे लोहे और सोने वगैरह को आग में डालकर मैल और जंग से पाक किया जाता है, इसका जहन्नुम में जाना भी ऐसा ही होगा। जिस वक्त जहन्नुम की आग से इसके गुनाहों का जंग दूर हो जाएगा तो जन्नत में दाखिल होने के काबिल हो जाएगा और जन्नत में भेज दिया जाएगा। और ये भी हज़रत इब्ने अब्बास ही कहते हैं कि क़यामत की मीज़ान अमल ऐसा सही वज़न करने वाली होगी कि एक राई के दाने के बराबर भी कमी बेशी होगी तो पल्ला झुक जाएगा या उठ जाएगा, यानी तराजू का फर्क होगा। और जिस शख्स की हसनात और सैयात मिजान अमल में बिल्कुल बराबर रहेंगी तो वह असहाबे आराफ में दाखिल होगा, और एक जमाने तक दोजख और जन्नत के दरमियान हुक्म सानी यानी अगले हुक्म का मुंतजर रहेगा, और बिलाखिर इसको भी जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। ये इब्ने अबी हातिम की रिवायत है तफसीर मसरी में। तो आप समझ रहे हैं ना कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना हम समझे बैठे हैं, हंस के दिखाने वाला मामला नहीं है। ऐसे ही कर लेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इंसानों को भी तोला जाएगा, उन सहीफ़ों को तोला जाएगा। इस पे सूरत आराफ में डिटेल से बात हुई है। बस आज दुनिया में पता चल जाए तो फिर समझ जाएंगे कि वाकई किसके पलड़े भारी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़्यामत के रोज़ शहीदों का खून और उलमा के कलमों की स्याही जिससे उन्होंने दीन की किताबें लिखी थी, इनको तोला जाएगा, और उलमा की रोशनाई का वज़न शहीदों के खून से ज़्यादा निकलेगा। नोट्स लेते हुए घबराया ना करें।